نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے خلوت اور گوشہ نشینی. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ خلوت کے معنی کیا ہے، پھر ہم آگے گفتگو کریں. ایک چیز ہے خلوت اور ایک چیز ہے جلوت. خلوت کے معنی پوشیدہ، گوشہ تنہائی، یعنی علیحدہ بالکل بیٹھ جانا، اور جلوت ظاہر ہونا، سامنے آنا. تو یہ دونوں ہم بدن لفظ ہیں، خلوت اور جلوت. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کی خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں. خلوت کے معنی باطن اور جلوت کے معنی ظاہر. اب بات اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہے نا، تو انسان کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. یہ جسم جو ہے یہ ظاہر ہے، اور دل جو ہے یہ باطن. دل کسی کو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا، لیکن جسم جو ہے یہ ظاہر. خلوت اور جلوت ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. اور اگر ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے تو پھر انسان نیک نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بزرگ قبلہ نے ایک بڑے پیارے انداز میں گفتگو کی اور اس مسئلے کو دو جملوں میں حل کر دیا. آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، ہم دو گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کا ولی دو جملوں میں کہہ دے. پوری تقریر دو جملوں میں ختم. اگر انسان اس کو سمجھ لے تو کامیاب. ایک دن اسی نشست سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے وہ گمراہ ہے. کیا مطلب؟ جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے، یعنی ظاہر میں تو بہت اچھا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور باطن میں کچھ بھی نہیں، یعنی چھپ کر خلوت میں کیا کیا وہ حرکتیں کر رہا، کیسے کیسے گناہ کر رہا، اور لوگوں کے سامنے بڑا متقی پرہیزگار ہے. تو اس کا مطلب وہ ظاہر اور باطن الگ الگ ہو گئے نا، ایک نہیں ہوا. باطن میں یعنی چھپ کر تو وہ گناہ کر رہا، ساری بدمعاشیاں کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا، اور ظاہر میں بڑا نیک متقی پرہیزگار بنا ہوا. تو جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے، یعنی ظاہر میں تو بہت اچھا ہے اور باطن میں بالکل وہ خراب ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، سب کچھ کر رہا، وہ گمراہ ہے. اور جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے وہ نیک ہے. یعنی جیسا ظاہر میں ہے ایسا باطن، جیسا لوگوں کے سامنے ہے ایسا ہی وہ علیحدگی میں بھی ہے، پوشیدگی میں بھی ہے، خلوت میں بھی اسی طرح. یعنی جس طرح ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو وقت ملتا ہے تو علیحدہ میں بھی اسی طرح پڑھتا. یہ مقصد ہے، میں اور آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ظاہر اور باطن اس کا ایک نہیں ہے، تو پھر وہ نیک نہیں. ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ ہے، اور بعد میں وہاں کچھ ہے. تو جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے وہ گمراہ ہے، اور جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے وہ نیک ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے وہ تقوی کے اعلی مقام پر ہے. کیوں؟ ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے گناہگار ہے، سیاہکار ہے، یا وہ بالکل ایسا ظاہر کرتا ہے کہ عام سا آدمی ہے، لیکن باطن میں وہ چھپ کے عبادت بھی کرتا ہے، وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ ریاضت بھی اختیار کرتا ہے، وہ تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے، ساری چیزیں وہ کر رہا ہے چھپ کر. تو اب اس کا باطن ظاہر سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ उसका बातिन जाहिर से बेहतर हो गया।
ये खिड़की बंद कर।
जब उसका बातिन जाहिर से बेहतर हो गया तो समझ लो कि वो फिर तक्वे के आला मकाम पर है। और यही इन बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन में और हम में फर्क है। हमारा जाहिर और बातिन एक नहीं। हम सब देख ले अपने अपना मुहासबा कर ले, देख ले हम जाहिरी तौर पर बड़े मुत्तकी परहेजगार, अगर कहीं जमात में नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी पूरी सुन्नतें पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबके साथ है ना, सब देख रहे हैं, ये जाहिर है। और बातिन अगर घर में नमाज का वक्त हो गया, अरे यार छोड़ो पढ़ लें, ऐसा है या नहीं है, चलो पढ़ लें। हाँ अगर मजमे में है फौरन चलो जमात खत्म होगी तैयार खड़े हो गए फौरन। तो होना ये चाहिए कि जैसे आप सब में हैं मजमे में हैं, यानी जैसा आपका जाहिर है ऐसा ही बातिन भी होना चाहिए। जिस तरह आप सबके सामने नमाज पढ़ रहे हैं इसी तरह अगर बिल्कुल तन्हाई में हो जहां कोई भी ना देख रहा हो वहां अगर नमाज का वक्त हो जाए तो वहां भी इसी तरह खड़े हो जाए, तब ये पता चलेगा कि जाहिर और बातिन एक है। वरना अगर हमने जमात के साथ तो नमाज पढ़ ली, जाहिरी तौर पर तो बड़े नेक काम कर लिए लोगों को दिखाने के लिए, और अगर हम पोशीदगी में हैं छुप कर हैं खलवत में हैं और नमाजों को तर्क कर दिया नेक चीज़ों को छोड़ दिया तो फिर जाहिर बातिन एक तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम मखलूक के लिए पढ़ रहे हैं खालिक के लिए नहीं पढ़ रहे। अगर खालिक के लिए पढ़ते तो पोशीदगी में खलवत में भी उसी तरह पढ़ते जिस तरह जलवत में, बातिन में भी उसी तरह जिस तरह जाहिर में। तो ये हमारा हाल है। और अल्लाह के इन नेक और बरगुजीदा बंदों का हाल क्या है कि इनका बातिन इनके जाहिर से बेहतर है, यानी वो अपने आप को इतना जाहिर नहीं करते, इतना नेक मुत्तकी जाहिर नहीं करते जितना कि वो तकवा परहेजगारी के आला मकाम पर। जाहिर में तो सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, आप सोचते हैं खाली नमाज ही पढ़ते हैं, लेकिन बातिन में नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, जिक्र अजकार भी कर रहे हैं, तिलावत कुरान भी कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की जर भी लगा रहे हैं, रब को राजी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो उनका बातिन उनके जाहिर से बेहतर है, इसीलिए वो तकवे के आला तरीन मकाम पर है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला जिनके हम मुकल्लिद हैं, हम उनके तकलीद करते हैं और उन्हीं की वजह से हनफी कहलाते हैं, आधी रात सोते थे आधी रात इबादत करते। मामूल चल रहा था, एक दिन एक जगह से गुजर रहे हैं, किसी ने कहा किसी जानने वाले ने कि देखो वो इमाम आजम जा रहे हैं, ये पूरी रात जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। जब आपने ये सुना, जिस दिन ये सुना उसी दिन से पूरी रात जाकर इबादत शुरू की। फरमाया हमें लोगों के गुमान के मुताबिक होना चाहिए, वो समझता है मैं पूरी रात करता हूं, मैं तो आधी रात करता हूं, आज से मैं पूरी रात इबादत करूं। ये है अहलुल्लाह, अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे कि जो जाहिर नहीं करते छुपा कर। हम समझते हमने नमाज पढ़ ली बहुत बड़ा काम कर लिया। नमाज पढ़ना, पांच वक्त नमाज पढ़ना, पाबंदी करना कमाल नहीं है, वह आप पर फर्ज है, वो आपकी ड्यूटी है। नहीं पढ़ोगे तो अजाब है, कयामत के दिन सवाल है, इस पर सजा है। हमने पांच वक्त नमाज पढ़ ली कोई कमाल नहीं। हाँ इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करो, ओवर टाइम करो, ये तो ऑफिशियल टाइम है ना, नमाज जो है ऑफिशियल टाइम है। अब एक आदमी की ड्यूटी है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में ड्यूटी मिसाल के तौर पे, तो अगर वो ये कहे कि मैं सुबह 8 बजे आता हूँ शाम को 5 बजे जाता हूँ, अपने मालिक से कहे अपने सेठ से कहे रोजाना मैं ये करता हूँ, तो वो कहेगा ये कौन सा कमाल, ये तो तुम्हारी ड्यूटी, इसी की तो उजरत ले रहे हो तुम। हाँ अगर 5 बजे छुट्टी हो जाए और उसके बाद फिर ओवर टाइम करो तब है कमाल, यानी जो ऑफिशियल टाइम है उसके अलावा काम करो। और कोई ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल टाइम भी नहीं करता आधा करके भाग जाता निकम्मा, तो हम सब की मिसाल उन्हीं निकम्मों की तरह है, हम पूरा जो ऑफिशियल टाइम है वो भी नहीं करते। यही बात है ना, फजर पड़ी तो जोहर गायब, जोहर पड़ी तो असर, असर पड़ी तो मगरिब, और मगरिब पड़ी तो ईशा, कोई ना कोई नमाज गायब। अब फजर तो गायब ही गायब, सही है ना। चले खैर इसको यहीं ढके रहने, फजर तो गायब ही गायब। खैर बहरहाल तो हम ये करते हैं जो ऑफिशियल टाइम वो भी नहीं। और अल्लाह के नेक बंदे पांच वक्त नमाज पढ़ी और उसके बाद सोचा कि अल्लाह तबारक व ताला पता नहीं राजी हुआ या नहीं, चलो 100 नफिल भी पढ़ लो शायद इससे राजी हो जाए, तिलावत कुरान भी कर लो शायद इससे राजी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगा लो शायद इससे राजी हो जाए। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम, अच्छा ये बताओ रात को जागना क्या हर इंसान पे फर्ज है, जरूरी है? नहीं। अगर नहीं जागे तो कोई मुआवजा नहीं है, कयामत के दिन कोई सजा नहीं है, कोई सवाल नहीं है तुम क्यों पूरी रात नहीं जागे, तुमने क्यों नवाफिल नहीं पढ़े, तुमने रात को तिलावत कुरान क्यों नहीं की। हाँ फर्ज नमाज जो ऑफिशियल टाइम जिसे कहा जाता है फर्ज नमाज, उसका सवाल है, इसका नहीं है। लेकिन जो चीज उन पर लाजिम नहीं थी उन्होंने रब को राजी करने के लिए खुद अपने ऊपर लाजिम कर ली। नवाफिल उन पर लाजिम नहीं थे, तिलावत कुरान जिक्र अज़कार और दीगर चीजें, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह रब राजी हो जाए। और जब वो रब राजी हो गया तो पूरी कायनात राजी। इस नुक्ते को समझा है बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन, इस नुक्ते को समझा। इसीलिए रात की तन्हाई में बैठकर खलवत में बैठकर वो रब को याद करते हैं, रब को याद करते हैं। उनका दिन मखलूक़े खुदा के लिए और उनकी रातें खुदा के लिए, रात को खुदा के लिए जागते हैं और दिन में मखलूक़े खुदा को फैज पहुंचाते हैं। बअल्फाज दीगर यूं कहा जा सकता है कि रात को फैज लेते हैं और दिन को देते हैं। रात को जाकर अपनी पावर अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ाते हैं और दिन में वही रूहानियत तकसीम करते हैं। रात को बैटरी चार्ज करते हैं, दिन में करंट सप्लाई करते हैं। अब तो समझ में आ गई होगी ना, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते। तो ये चीज है, इसको कहते हैं खलवत और जलवत। तो उनका जाहिर और बातिन एक, क्या बातिन जाहिर से भी बेहतर है? जाहिर में वो ऐसा अपने आप को करेंगे कि जैसे हम कुछ नहीं, नहीं हम तो नेक, हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हम तो फकीर हैं हकीर हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उनका जो मकाम है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग जिनके बाल गर्द से अटे हुए हैं, फटे पुराने लिबास में हैं, तुम देखोगे तो उनको बहुत ही जलील हकीर ख्याल करोगे। लेकिन उनका मकाम ये होगा कि अगर वो अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह की बारगाह में किसी चीज पर कसम उठा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कसमों को पूरा कर दे। उनका मकाम ये हो, अपने आप को जाहिर नहीं करते, पब्लिक से दूर, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि हमारा मकाम क्या है, छुपाते हैं, वो छुपाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जाहिर करना चाहता है तो जाहिर कर दे। तो ये खलवत और गोशा नशीनी ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन से चली आ रही है। और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने कहाँ से लिया? इन सब ने ये चीज ली है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जिस जात ने खलवत और गोशा नशीनी को इख्तियार किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात। आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, पहली वही नाजिल हुई कहां पर, कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में, तो बोलो इसमें शर्माने की क्या बात, गारे हिरा में नाजिल हुई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या था? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वो तोशे दान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उसमें खाना रख देते और वो लेकर गारे हिरा में चले जाते थे। क्यों जाते थे, क्यों जाते थे? घर में भी तो इबादत हो सकती थी? नहीं, अपने काशाने नबुव्वत से निकलते थे, सफर करते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे और फिर गारे हिरा में जाकर बैठकर इबादत करते थे। कैसे जाते थे आज जाकर देखो तो पता चल जाए। इस साल हमें मौका मिला और हमने कोशिश की कि चढ़ेंगे, चढ़ते चढ़ते पता चल गया, जब तक हिम्मत हुई चढ़े, जब बहुत ज्यादा सांस फूल गया तो बैठ गए, फिर थोड़ा सा पानी पिया, फिर खजूर खाई, फिर चढ़े। डेढ़ घंटे में या इससे ज्यादा शायद, तब जाके उस चढ़ाई पर पहुंचे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जाते थे, चार चार दिन वहां इतकाफ करते थे, फिर वापस आ जाते थे। जो जा रहे थे हमारे साथ वो हैरत कर रहे थे, कैसे जाए, कैसे जाते होंगे, हम थक गए, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जाते होंगे इन पहाड़ों पे से गुजर कर। और अब तो सीढ़ियां बनी हुई, जब तो सीढ़ियां भी नहीं थी, पहाड़ ही पहाड़ थे। इन पहाड़ों पे चढ़कर मैं सोचने लगा कि ये बेवकूफ खामखई सोच रहे हैं कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम कैसे जाते होंगे। अरे पहाड़ तो अपना दामन बिछा देता होगा, वो तो अपना सीना हुजूर के लिए नरम कर देता होगा कि सरकार के कदम मेरे ऊपर आ रहे। और वो सिया पहाड़ जो देखने में बिल्कुल सिया है, लेकिन नाम उसका है जबल नूर, इसलिए कि नूर ने कदम रख दिया, नूर ही नूर हो गया। सरकार नूर है, नूर ने कदम रख दिया, वो आज भी जबल नूर है। देखने में सिया है, लेकिन अगर दिल की आंखों से देखो तो उससे ज्यादा सफेद कुछ नहीं, जितना नूर वहां है कहीं नहीं। तो हुजूर पुन्नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे खलवत में, गोशा नशीनी में, क्यों, रब से बातें करते। तो खलवत और गोशा नशीनी वहीं से चली, सूफिया ने वहीं से ये चीज ली, गारे हिरा की तन्हाइयों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होते, कई कई दिन रहते थे, फिर वापस आते थे, और फिर वो अपना खाने का सामान तोशेदान लेके फिर दोबारा चले जाते। वहीं पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए, इकरा पढ़िए, फरमाया माना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाया, भीजा और छोड़ दिया। फिर कहा इकरा, हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता। फिर दोबारा सीने से लगाया, भीजा और फिर छोड़ दिया। फिर कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। सरकार ने उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया लिखा कि पहली मर्तबा क्यों नहीं पढ़ा, दूसरी मर्तबा क्यों नहीं पढ़ा, तीसरी मर्तबा क्यों पढ़ा। वजह यह थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि अब मेरी जबान रिसालत खुल रही है तो रब के नाम से खुले। जिब्रील तू रब का नाम तो ले तब मैं पढ़ूंगा। इकरा इकरा कह रहा है, फरमाया मैं नहीं पढ़ता। और जिब्रील सोचने लगे कि ये क्यों नहीं पढ़ रहे, इसलिए सीने से लगाया, भीचा और समझने की कोशिश की कि क्यों नहीं पढ़ रहे। जब सरकार ने समझा दिया और जिब्रील ने रब का नाम दिया, जैसे ही रब का नाम आया हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो गारे हिरा की तन्हाइयों में गोशा नशीनी इख्तियार की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये वहीं से चिल्ला कशी वहीं से चली। आप देखते ना बुजुर्गानुद्दीन और कामिलीन हुजरे में बैठते, हुजरे में अलग तन्हाई में, कोई 40 दिन के लिए बैठ गया, कोई 3 दिन के लिए बैठ गया, मुख्तलिफ वक्फा है, मुख्तलिफ मुद्दत है। और आज भी इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के हुजरे मौजूद हैं। पाकपट्टन शरीफ चले जाइए, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा मौजूद। दाता गंजलख में चले जाइए, हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का हुजरा मौजूद है, ना हुजरा मौजूद। पंडवा शरीफ चले जाइए, हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा मौजूद। ये सारे हुजरे क्यों हैं, क्या जरूरत है इन हुजरों की, इसलिए कि वो तन्हाई में खलवत में बैठकर अपने रब को याद करते थे, अपनी रूहानियत में इजाफा करते थे, अपनी बैटरी को चार्ज करते थे, अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ाते थे। तो हुजरे में जाते थे उस कुव्वत को बढ़ाने के लिए, और बाहर आते थे उस रूहानियत को तकसीम करने के। तो ये है खलवत गोशा नशीनी। तो इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने गोशा नशीनी इख्तियार की, खलवत इख्तियार की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि घर में बिल्कुल तन्हा अकेले। उन्होंने कहा इस तन्हाई में गोशा नशीनी में आपको वहशत नहीं होती, आप अकेले इस घर में मौजूद। उन्होंने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को वहशत होगी? अल्लाह के साथ वहशत होगी, मेरा रब मौजूद है मैं उसके साथ, कोई वहशत की जरूरत नहीं, कोई खौफ की जरूरत नहीं, मेरा रब मौजूद है, तू हो तेरा जलवा हो और गोशाए तन्हाई। तमाम चीजों को, तमाम आलाइशों को, तमाम चीजों को हटाकर दुनिया के उन खेल तमाशों से दूर होकर फिर वो बैठ जाते हैं। अब इस बैठने में भी दो चीजें हैं, हुजरा बंद करके बैठने में, चिल्ला कशी में। एक चीज तो ये है कि इंसान ये सोचे कि मैं लोगों के शर से बचकर मैं यहां बैठ गया, ये भी एक चीज है ना कि भाई लोगों में बैठेंगे झूठ सच होगा, बुराई होगी, गिबत होगी, चुगली होगी, सारी चीजें होंगी, सबसे बचकर बिल्कुल अलहदा कमरे में गोशा नशीनी में बैठ गए। एक ख्याल तो यह है कि मैं लोगों के शर से बचकर बैठा हूं, यह आम ख्याल है। और एक और ख्याल जो बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन अपने जहन में रखकर बैठते हैं, हम ये कहते हैं ना लोगों के शर से बचकर, वो कहते नहीं मैं अपने शर से लोगों को बचाने के लिए यहां बैठा हूं। दो बातें हो गई ना, पहली चीज क्या हुई, लोगों के शर से बचकर बैठा हूं, ये भी एक ख्याल एक नियत है। और दूसरी चीज मैं इतना गुनाहगार हूं, मैं इतना खताकार हूं कि अपने आप से लोगों को बचाने के लिए मैं यहां बैठा था, अपने नफ्स को जलील हकीर समझा। यही तरीकत की तालीम है कि अपने आप को सबसे कमतर समझो, अपने आप को सबसे बदतर समझो, अपने आप को सबसे जलील हकीर समझो। तो जब अपने नफ्स को जलील हकीर समझोगे तब रब्बुल आलमीन तुम्हें उरूज अता फरमाता। और अगर तुम खुद बढ़ने की कोशिश करो, मैं सबसे अफजल हूं, मैं सबसे आला हूं, मैं सबसे बरतर हूं, मैं सबसे बाला हूं, जब ये मैं की रट लगेगी और अपने आप को बुलंद करने की कोशिश करोगे उसी वक्त गिर जाओगे, जलील हकीर हो जाओगे। दोनों में फर्क हो गया। आप देखते ना दुआए हिज्जुल बहर जो हमारे सिलसिले अशरफिया की एक अजीम दुआ है और तमाम बुजुर्गान ने सिलसिले अशरफिया ने इसको अपने मामूलात में रखा और आप लोग भी यकीनन इसको पढ़ते होंगे। उसमें एक जुमला है, एक दुआ समझें उसे, अल्लाहुम्मा जअलनी अजीजन फी आयुनिन नासी व जलीलन फी ऐनी। ऐ अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में इज्जत दे और अपनी नजरों में मुझे जलील कर दे। अल्लाहुम्मा जअलनी अजीजन फी आयुनिन नास, नास के माने लोग, फी आयुनिन नास लोगों की नजरों में मुझे इज्जत दे, व जलीलन फी ऐनी यानी मैं अपनी नजरों में मैं जलील हो जाऊं। आप अपने आप को खुद जलील हकीर समझे और लोग आपको इज्जत दें। और अगर खुद समझे कि नहीं मैं हूं सबसे बड़ा तो फिर लोगों की नजरों में भी जलील हो जाता। सूफिया ने यही तालीम दी है, मशाइख तरीकत की तालीम यही है कि अपने आप को झुकाते रहो, कमतर समझते रहो, बदतर समझते रहो, तवाज़ो इख्तियार करो। जब तवाज़ो इख्तियार करोगे, आजिज़ी इख्तियार करोगे, इनके सारे इख्तियार करोगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उरूज अता फरमाएगा। और वो ऐसा उरूज अता फरमाएगा और ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि जिंदगी में भी बाइज्जत और मरने के बाद भी बाइज्जत, जिंदगी में भी बावकार और विसाल के बाद भी बावकार, जिंदगी में भी लोग इज्जत करेंगे और विसाल के बाद मजार से भी फैज जारी होगा। ये चीज तो अब ये दो चीजें हो गई कि हम अपने आप को अपनी नजरों में जलील हकीर समझ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, हर इंसान अपने ऐब हुनर को जानता, ठीक है ना, अपनी खताओं को, अपनी लफ्जिशों को, अपने गुनाहों को हर इंसान जानता है। लेकिन होता क्या है, दूसरों पर तनकीद करता है, दूसरों के ऐब ढूंढता है, दूसरों की गलतियों को पकड़ता है और अपनी होश नहीं कि खुद क्या किया। दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है, दूसरों के उयूब और नकाइस को तलाश करना बहुत आसान है, दूसरों की गलतियों खताओं को पकड़ना आसान है, अपनी गलतियों को पकड़ना मुश्किल। तो जो इंसान अपनी गलतियों को पकड़ ले, जो इंसान अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, जो इंसान खुद अपनी जात में ऐब तलाश करके उसे कम करने की, मिटाने की कोशिश करे, वही कामयाब है। और जो दूसरों पर तनकीद करता रहे तो वो फिर कामयाब नहीं हो सकता। तरीकत की तालीम यही है कि पहले अपना मुहासबा करो, फिर दूसरों का मुहासबा करो। तो अगर हर सालिक जो राह सलूक तय कर रहा है, जिसने तरीकत में कदम रखा है, जो किसी भी साहिब सिलसिला के हाथ पर बैत है, उसको चाहिए कि पहले अपना मुहासबा करें, अपनी गलतियों को देखे, उसके बाद दूसरों की तरफ देखे। और अगर हम अपनी गलतियों को देखते रहेंगे, खुद ब खुद वो गलतियां दूर होती रहेंगी और एक वक्त आएगा कि नेक लोगों में शुमार हो जाएंगे। और अगर सिर्फ दूसरों पर तनकीद करते रहें तो फिर नहीं हो सकता। और अगर हम अपने गुनाहों पर नादिम होकर सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपना मुहासबा कर लें तो आधी से ज्यादा परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। आज हमारी परेशानियों की वजह भी यही है, बहुत सी गलतियां इंसान से ऐसी हो जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पकड़ हो जाती है और फिर वो वावेला करता है, परेशान होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये मुश्किल है। अगर खुद अपना मुहासबा कर ले और अपने रब के हुजूर तौबा कर ले तो समझ लो कि रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में कैद साली हो गई, दुआ की मूसा कलीमुल्ला ने, मौला बाराने रहमत नाजिल कर दे, बारिश नहीं हुई, फिर दुआ की बारिश नहीं हुई, फिर दुआ की बारिश नहीं हुई। क्या वजह है, दुआ कर रहा हूं बारिश नहीं हो रही। इरशाद रब्बानी हुआ, मूसा तुम्हारी कौम में एक शख्स ऐसा है जो कई सौ साल से मुसलसल गुनाह कर रहा, उसकी वजह से बारिश नहीं हुई, इतना अरसा हो गया उसको गुनाह करते। उस जमाने में उम्रें बहुत होती थी। अच्छा, अगर वो शख्स इस कौम से निकल जाए, इस मजमे से निकल जाए, हम दुआ कबूल कर लेंगे, बारिश हो जाएगी। मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान कर दिया, कौन है वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, मुसलसल गुनाह पे गुनाह कर रहा है, अरे उसकी वजह से पूरी कौम तबाही का शिकार हो रही है, बराने रहमत नहीं बरस रहा, उसको चाहिए कि अभी यहां से उठे और फौरन इस मजमे से निकल जाए या इस शहर से निकल जाए ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। अब क्या हुआ, जाहिर है हर शख्स जानता है कि वो क्या कर रहा, वो भी समझ गया कि मैं ही वो शख्स हूं कि जो इतने अरसे से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। उसने दिल ही दिल में कहा, मौला वाकई मैं गुनाहगार, सियाकार, खताकार हूं और मेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा, लेकिन ऐ इलाहुल आलमीन, अगर मैं इस मजमे से उठकर गया, ये सारे लोग मुझे देखेंगे और मेरी कितनी रुसवाई होगी। और यह हकीकत है ना, जब वो निकल कर जाता तो सब देखते कि कौन है वो, ऐलान सब ने सुना था, कहता अच्छा ये है वो बदबख्त, अरे इसकी वजह से ये हुआ था। उसने बहुत रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ की, मौला मेरी पर्दापोशी कर ले, मुझे रुसवाई से बचा ले, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आइंदा कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। रो कर, गिड़गिड़ा कर, सच्चे दिल के साथ उसने तौबा की, मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, आज इस मजमे में मेरी इज्जत रख ले और बाराने रहमत नाजिल कर दे। उसी वक्त बादल आए, बारिश बरसना शुरू। अब बारिश बरसना शुरू हो गई, मूसा अलैहि सलाम हैरान हुए, कोई आदमी निकल के तो गया नहीं, मौला तूने तो ये कहा था इस मजमे में मौजूद है, जब वो निकल कर जाएगा तब हम बारिश नाजिल करेंगे, कोई निकला तो नहीं, हम बारिश भी हो गई, कौन है ए इलाहुल आलमीन, मुझे बता दे कौन है। मूसा उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, हमने तौबा कबूल कर ली। अब जिसकी वजह से बारिश नहीं बरसा रहे थे उसी की वजह से हमने बरसा दी, जिसकी वजह से हमने रोक दिया था बाराने रहमत को, बारिश नहीं बरसाई थी, मूसा अब उसकी तौबा कबूल करके उसी की वजह से हमने बारिश बरसाई। अब देखो अल्लाह की शान, मूसा अलैहि सलाम को अब जस्तजू हुई, वो है कौन जो इतना बड़ा गुनाहगार कि उसकी वजह से बारिश रुक गई और उसके बाद उसने तौबा की और इतना मकबूल हुआ कि उसी की वजह से बारिश हो गई। मौला मुझे बता दे है कौन, कौन है वो। मूसा हम उसकी पर्दा पोशी कर रहे हैं, हम उसकी पर्दा पोशी कर रहे हैं इसलिए कि अब वो हमारा हो चुका है, पहले हमारा नहीं था, हमारी को मजदूरी कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, गुनाह पर गुनाह कर रहा था, अब उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, हम कैसे बता दें कि कौन है मूसा, वो हमारा हो चुका है, उसी की वजह से रोकी थी, उसी की वजह से बरसा दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है कि अगर कोई गुनाहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, कसदन या सहवन कोई भी गुनाह उसे सरजद हो गया हो, उसको चाहिए कि डायरेक्ट, उसका मामला इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अल्लाह के साथ, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, मौला मैं तौबा करता हूं, मेरी पर्दा पोशी कर ले, उसकी बारगाह से उम्मीद है कि पर्दा पोशी भी करेगा, गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। यह उसकी शान है, वो बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, और जब बंदों से मोहब्बत करता है और महबूब बना देता है तो जाहिर है महबूब को अजाब नहीं दिया जाता, महबूब को तकलीफ नहीं दी जाती, और महबूबों को जहन्नुम में नहीं डाला जाता, उनके लिए जन्नत ही जन्नत। तो इसलिए सच्चे दिल के साथ उसकी बारगाह में तौबा करके उसके महबूब बन जाओ ताकि जहन्नुम से महफूज हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो बात कहां से निकली, खलवत और जलवत। तो ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन खलवत में गोशा नशीनी में बैठते हैं, क्यों, मखलूक से बिल्कुल अलग होकर, अपनी इस्लाह के लिए, अपने बातिन की इस्लाह के लिए, अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए, रूहानी पावर पैदा करने के लिए। इसीलिए बुजुर्गान दीन के हुजरे हमें जगह जगह नजर आते हैं, पाकपट्टन में, दाता गंज अली हिजवेरी के दरबार में, पंडवा शरीफ में और दीगर मकामात पर ये हुजरे मौजूद हैं। ये फलां बुजुर्ग का हुजरा है, ये उनका हुजरा है, ये साबिर पाक का हुजरा है, ये मखदूम समनानी का हुजरा है, ये गरीब नवाज का हुजरा है। ये हुजरे क्यों हैं, खलवत और गोशा नशीनी सिर्फ अल्लाह के लिए। अब ये क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से राज़ो नियाज की बातें करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अपने सरबस्ता राज इन्हें अता फरमा देता, यानी वो चीजें जो आम लोग नहीं देखते अल्लाह के ये बंदे वो देखते हैं, वो चीजें, वो बातें जो आम लोग नहीं सुनते और वो खबरें जो आम लोग नहीं सुनते अल्लाह के ये नेक बंदे जो हैं उसको सुनते हैं, लेकिन कब, जब वो बिल्कुल अलैदा। अब देखिए, हमने अपनी इस जिंदगी में हर एक के लिए एक वक्त रखा है। अब जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका एक टाइम है ना, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी, रोजाना आप जा रहे हैं, ये टाइम क्या है, ऑफिस के लिए है। या अगर कोई दुकान पे बैठ रहा है तो सुबह उसने 9 बजे तो खैर 9 बजे तो कोई मार्केट खुलती नहीं, सोते ही रहते सर, 11 बजे जाके खुलती, 11-12 बजे, और फिर उसके बाद रात को पाँच, शाम को 5 बजे या रात को 10 बजे तक, तो ये टाइम क्या है? आपके रोजगार का है, कारोबार का है, नौकरी का है, जॉब का है। उसके बाद घर आए, खाना खाया, ये घर वालों का टाइम है। हर एक के लिए टाइम है ना, कारोबार के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है। उसके लिए भी कोई टाइम है जिसने तुम्हें पैदा किया? उसके लिए कोई टाइम नहीं। और उसके लिए तो इतना टाइम नहीं है, हम क्या टाइम रखेंगे? जो टाइम उसने रखा है उस टाइम पे भी हाजिर नहीं होते। ये 5 वक्त का टाइम उसने रखा है ना, आप कहेंगे जी आपने कैसे कह दिया टाइम नहीं है, हम तो फजर पढ़ते, दोपहर पढ़ते, असर पढ़ते, मगरिब ईशा पढ़ते, हमने तो ये टाइम रखे हैं। अरे ये टाइम आपने नहीं रखे, ये उसने रखे हैं। इन टाइम पर भी हाजिर हो जाओ तो फिर बहुत बड़ी बात है। ये सारे टाइम उसने रखे, और अल्लाह के नेक बंदों ने इसके अलावा रात को उसके लिए टाइम रख दिया। कुरान कहते वजअल लैला लिबासम वजअल नहार माशा, रात हमने सोने के लिए और दिन माश के लिए, कस्बे माश के लिए रखा। लेकिन जो रात उसने सोने के लिए रखी, अल्लाह के नेक बंदों ने वही रात उसकी रजा के लिए रखी, उसको राजी करने के लिए। और जब वो ये देखता है कि सिर्फ मेरी वजह से, मुझे राजी करने के लिए, मेरी रजा को हासिल करने के लिए इसने पूरी रात जाग कर गुजारी है, फिर वो अपनी रहमतों और अनवार की बारिश बरसा देता, और ऐसी बारिश बरसती है और उसकी दुआ, उस जागने वाले की दुआ ऐसी कबूल होती है कि जब भी वो मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर जरूर उसे अता फरमा दे। इसलिए कि रब की रजा के लिए जाग रहे। अब जागना तो वैसे कई किस्म का है, लोग किसी भी मकसद के लिए जागते हैं। कोई रात को रिमोट लेके बैठता है और घुमाता रहता है, चैनल देखकर रात गुजारता है, अक्सर यही होता है ना। कोई इंटरनेट पर बैठकर उल्टी सीधी हरकतें करता है, चैटिंग करता है, ये भी होता है, रात गुजार देते। बहुत से लोग ताबीज लेने आते, बच्चा कमरा बंद करके बैठ जाता इंटरनेट पर। अब देखिए हर चीज का इस्तेमाल सही भी गलत, इस्तेमाल आपके ऊपर है, आप उस चीज को सही इस्तेमाल कर लें या गलत कर लें। ये इंटरनेट चल रहा है, ये तरबियती नशिस लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लोग इसको सुन रहे हैं, ये इस्तेमाल सही है या नहीं है? जिसने किया है इंतजाम उनको भी सवाब मिल रहा है, और जो सुनकर अमल करेंगे उसमें से भी कमीशन मिलेगा। यही चीज है ना। और इसी को गलत इस्तेमाल कर लो तो गुनाह जारिया है। जिस तरह सवाब जारिया है, इस तरह गुनाह जारिया भी है। तो कमरा बंद करके चैटिंग करना या उल्टी सीधी हरकतें करना क्या है? ये गुनाह जारिया है, गलत है। अपने आप को संभालें, अपने आप को खुद संभालें, अपनी खुद इसलाह करें और उस चीज से बचने की कोशिश करें। इसलिए कि शैतान हर वक्त आपके साथ, उसी चीज को आप सही इस्तेमाल कर लें सवाब जारिया में दाखिल हो जाए, और उसी को गलत कर लें तो वो गुनाह जारिया हो जाए। तो रात गुजारने के तो कई तरीके हैं, लेकिन कुरान ने कहा यबी तू नब्बेहिम सुज्जदम व कयामा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो सजदा करते हुए, कयाम करते हुए अपनी रातों को गुजारते। बंदे वो हैं, वो नहीं जो इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए रात गुजारते, जो उल्टी सीधे हरकतें करते हुए, नहीं। बंदे तो सारे ही हैं, आप कहेंगे क्या वो बंदे नहीं हैं? सारे बंदे हैं, लेकिन जिनको वो खुद अपना बंदा कह दे हकीकत में वो बंदे। अब एक मालिक के बहुत से गुलाम हैं, या एक बाप के बहुत से बेटे हैं, एक बेटा फरमाबरदार है तो वो क्या कहेगा? उसको बुलाकर कहेगा ये है मेरा बेटा। ये कहते हैं ना, जो बाप का फरमाबरदार हो वो उसके कमर पे हाथ रखे या उसके सर पे हाथ रखे, ये है मेरा बेटा। तब दूसरे कहेंगे कि क्या और बेटे नहीं हैं? वो कहीं से एडॉप्ट किए थे आपने? वो भी तो आप ही के बेटे हैं। हाँ बेटे तो वो भी हैं, लेकिन फरमा बरदार यही है। क्या मतलब? बंदे तो सब उसके हैं, لیکن سجد عدم و قیامہ کے مزداق وہ ہیں جو سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ ہیں اللہ کے بندے جو اپنی راتوں کو اس کی رضا کے لیے گزار دیتے. تو بات یہاں سے چلی کہ خلوت اور جلوت. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ان نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہمیں وہ کرنا ہے. کچھ دیر آپ اپنے لیے اپنے رب کے لیے رکھیں. جس طرح بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, کاروبار کے لیے ٹائم ہے, سونے کے لیے ٹائم ہے, اور مختلف مشاغل کے لیے, کھیل تماشوں کے لیے کا ٹائم ہے, تھوڑا سا ٹائم اس خالق کائنات کے لیے بھی نکالو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو تمہیں رزق دے رہا. آنکھ بند کر کے اپنی گردن کو جھکا کر اپنے قلب پر اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے اللہ 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 اس کی ضرب لگاتے ہیں. اور یہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, کسی مقام پر کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد چاہیں تو ہر نماز کے بعد 5 منٹ کر لیں. جیسے آپ نے فرض نماز پوری کی, دعا ہوئی, اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی گردن کو جھکا کے تصور کریں کہ آپ کے دل پر اس میں اللہ لکھا ہوا, اس میں اللہ لکھا ہوا, یعنی قلب سیاہ ہے, صرف اس میں اللہ جو ہے یہی چمک رہا, اور اسی طرف توجہ کر کے. ذکر خفی اسے کہا جاتا ہے, جو پوشیدہ خاموشی سے ذکر خفی آہستہ کے ساتھ اللہ 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 یہ کرتے رہیے. اور ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ سانس روک کر 100 مرتبہ اللہ کہیں, سانس روک کر 100 مرتبہ. چاہیں تو آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, اس میں بھی آپ کر سکتے. اس کے لیے بھی کوئی دن کی, کوئی جگہ کی, کسی مقام, کسی وقت کی قید نہیں, کسی وقت بھی. اگر فجر سے پہلے کریں تو سبحان اللہ, اس وقت تو رحمت ہی رحمت. لیکن فجر سے پہلے تو جب کرو گے نا, جب اٹھو گے, اٹھو گے نہیں تو کرو گے کیا؟ فجر کے لیے اٹھ جاؤ تو بڑی بات. تو وہ ٹائم تو بیسٹ ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسی لیے ہم نے کسی ٹائم یہ قید نہیں رکھی کہ کرے تو صحیح, کچھ تو کرے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. چلو فجر کے انتظار میں تو پھر ذکر ہی چھوڑ دو. تو فجر تو خیر لازم ہے, لیکن ذکر آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے, گناہوں کی سیاہی دور ہوگی اور اللہ رب العالمین کا نور جلوہ گر ہو جائے. اور جب یہ قلب روشن ہو جائے گا, جب یہ قلب روشن ہو جائے گا اور آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا, تو یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آئے. قلب صاف ہونے کی ضرورت ہے. آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے, آئینے کا کام کیا ہے؟ اس کو شکل دکھا دے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, اب بہت سے تو کھڑے ہی رہتے ہیں, ہٹتے ہی نہیں, اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو آئینے کا کام ہے دکھا دینا ہر عیب اور ہنر, اچھائی برائی دکھا دیتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ بالکل صاف اور شفاف. اگر اس پر دھبا ہے شکل نہیں نظر نہیں آئے گی. تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کہ دل گناہوں میں ڈوب چکا ہے, گناہوں کی سیاہی دل پر آ گئی, جھوٹ کی سیاہی, غیبت کی سیاہی, چغلی کی سیاہی, دھوکہ دہی کی سیاہی, امانت میں خیانت کی سیاہی, ظلم اور زیادتی کی سیاہی, ساری سیاہی جو ہے دل کے اوپر آ گئی اور دل سیاہ ہو گیا. اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر کیا نظر آئے؟ کچھ نظر نہیں آئے. تو اسی دل کو اللہ کے ذکر سے اس کی ضرب لگا کر بار بار اللہ کی ضرب لگائیں, اور اگر ایک ساتھ میں آپ 100 مرتبہ کر لیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب. لیکن اس میں ایسا کریں کہ ظاہر ہے ایک مرتبہ میں یہ مشکل ہے. فوراً اگر آپ بیٹھ جائیں گے سانس روک کر تو پھر ذرا سی مشکل ہوگی. اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا سانس روکیں, دیکھیں کتنی دفعہ آپ نے پڑھا اللہ 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 اللہ, تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, پھر اور وقفہ بڑھا دیں اور بڑھا دیں. اور اگر پہلی مرتبہ سوچا کہ میں 100 مرتبہ کر لوں, ایسا نہیں کہ سانس ہی رک جائے, بالکل آئے نہیں دوبارہ, खैर वो भी कोई मसला नहीं है, नहीं आए तो अल्लाह के अल्लाह अल्लाह करते हुए चले गए सीधे, सीधे ही पहुंच जाओगे फिर तो सीधे जन्नत में। हाँ यहाँ तो सुभान अल्लाह सब कह रहे हैं लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम क्यों जाएं, अभी तो बहुत कुछ करना है, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाना है, ये करना है, ऐसे ही चले जाएं। खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह इसमें अल्लाह ऐसा है जब इसका नूर कल्ब में पैदा होगा कल्ब रोशन हो जाए और खुद ब खुद इंसान गुनाहों से बचेगा। और अगर ख्याल भी पैदा होगा कि मैं गुनाह की तरफ जाऊं, अल्लाह की रहमत आपको उससे रोक देगी, बचा देगी। और इस दुनिया में रहते हुए जो अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से बचाकर अपने ईमान को साथ लेकर चला गया समझो वही कामयाब। साहिब ईमान इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी बात है, बेईमान होकर मत मर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह गौसे आजम का ये इरशाद उनकी बशारत है, कोई भी मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ कयामत तक दाखिल होने वाला बगैर तौबा की ये मौत नहीं आएगी, तौबा की तौफीक मिलेगी। इसलिए तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को अपने पेश नज़र रखें। आज की हमारी ये नशीन जो थी खलवत और गोशा नशीनी, खलवत के माना गोशा नशीनी यानी बिल्कुल अलहदा होकर बैठना, इसके मुतालिक थी, हमने इस सिलसिले में आपको बता दिया। और इसमें ये कि आप अगर चाहें, क्योंकि हर शख्स जो है वो ये नहीं कर सकता कि उसके एक अलग हुजरा अपनी इबादत के लिए बना ले, जाहिर है कि बहुत से घर ऐसे हैं कि जो बड़े हैं जो आदमी कर सकता है, जिनके घर छोटे हैं वो नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके लिए खलवत और गोशा नशीनी का मकसद इस तरह पूरा हो सकता है कि जब वो नमाज पढ़ें 5 मिनट अपने रब के लिए रख लें, फर्ज नमाज के बाद या नमाज मुकम्मल करने के बाद 5 मिनट आप बैठ जाइए अपनी गर्दन झुका के अपने कल्ब पे इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करते हुए अल्लाह अल्लाह का विर्द कीजिए और यही आपकी खलवत है, यही आपकी गोशा नशीनी। अगर ये 5 मिनट भी आपने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए और हर नमाज के बाद कर दिए तो कितने मिनट हो गए, 25 हो गए ना, तो 25 जब होंगे ना जब पूरी 5 पढ़ोगे, वरना अगर बीच में गायब हो गए तो 25 नहीं होंगे। तो अगर ये 25 भी कर लिए तो आप समझ लें कि काफ़ी आपके कल्ब की स्याही दूर हो जाए। तो यही आज का सबक है, इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं, इन तमाम चीज़ों को गौर से सुने, इस पर अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु अपने इन नेक और बरगुजीदा बंदों के सदक़े में हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखे। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बयान किया इसको अपनी बारगाह मंजूर मकबूल फरमाए। या अल्लाह इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, जो किसी परेशानी में उतरा है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारह कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन जिन हजरात ने जिन जिन मकासिद के लिए दुआ के लिए कहा है मौला उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, उन सब के मसाइल को हल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिन हजरात ने और जिन खवातीन ने इस नशिस्त में शिरकत की है मौला इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इन सब की ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। ए इलाहुल आलमीन हम सबको अपने पीर मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनकी तरह अपने मामूलात पर इस्तेकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين